लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कैथोलिक विश्वासी युक्रिस्तीय समारोह को अपने हृदय के केंद्र में रखकर मानवीय रिश्तों को रूपांतरित करने में सक्षम बने तथा अपने समस्त भाइयों एवं बहनों और ईश्वर के संग साक्षात्कार के प्रति उदार रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पापा पॉल षष्ठम के सभागार में विश्व के विभिन्न देशों से आए विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno. Adesso, proseguendo questa catechesi sul tema dello zelo apostolico e della passione per l'annuncio del Vangelo, guardiamo oggi a Santa Kateri Tekawita.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। हम सुसमाचार प्रचार हेतु प्रेरितिक उत्साह और जोश पर अपने धर्म शिक्षा माला जारी रखते हैं। आज हम संत कतेरी टेकाविथा, उत्तरी अमेरिका की प्रथम महिला संत के बारे में जिक्र करेंगे। उनका जन्म 1656 ईस्वी के आसपास न्यूयॉर्क के एक गांव में हुआ था। वह गैर बपतिस्मा प्राप्त अख्रिस्तीय मोहक प्रमुख और एक अंग्लोक्विन ख्रिस्तीय माँ की बेटी थी, जिन्होंने कतेरी को प्रार्थना करना और ईश्वरीय महिमा गान गाना सिखलाया। हममें से बहुतों को भी, विशेषकर ईश्वर से हमारा परिचय हमारी माताएं और दादा दादियां कराते हैं। इस भांति हम इस बात को ना भूलें कि विश्वास का प्रसार माताओं और दादा दादियों के द्वारा क्षेत्रीय भाषा में होता है। हम इसे अपनी माताओं और दादा दादियों के द्वारा अपने लिए प्राप्त करते हैं। संत पापा ने कहा कि सुसमाचार प्रचार की शुरुआत बहुधा ऐसे ही होती है, जहां हम साधारण छोटी निशानियों को देखते हैं, जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को प्रार्थना में ईश्वर से बातें करना सिखलाती और उनके महान करुणामय प्रेम की चर्चा करते हैं। कतेरी में विश्वास की नींव जैसे कि बहुधा हमारे जीवन में रखी जाती है, वैसे ही डाली गई। जब कतेरी 4 वर्ष की थी, छोटी चेचक की एक महामारी उनके लोगों के बीच फैल गई। इस महामारी में उसके माता पिता और छोटे भाई की मृत्यु हो गई और कतेरी अपने चेहरे पर दागें लिए दृष्टि की समस्याओं से अकेले रह गई। तब से कतेरी को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चेचक के कारण उसकी शारीरिक समस्याएं निश्चित रूप में उसे ना समझी, सतावट, यहाँ तक कि जान से मार डाले जाने की धमकियां, जो उन्हें 1676 के पास का रविवार को बपतिस्मा ग्रहण करने से शुरू हुई। इन सारी चीजों ने कतेरी के हृदय में क्रूस के प्रति एक गहरे प्रेम को उत्पन्न किया, जो ख्रीस्त के प्रेम की एक निश्चित निशानी है, जिसमें उन्होंने हमारे लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया। वास्तव में सुसमाचार का साक्ष्य देना केवल उन बातों से संबंधित नहीं है जो हमें अच्छे लगते हैं, बल्कि हमें इस बात को भी सीखने की जरूरत है कि हम अपने दैनिक जीवन के क्रूस को धैर्य, विश्वास और आशा में वहन करें। कठिनाइयों और जीवन के क्रूस का सामना करने में धैर्य की आवश्यकता है। संत पापा ने कहा,
La pazienza è una grande virtù cristiana,
धैर्य एक वृहद ख्रिस्तीय मूल्य है। जिसमें धैर्य की कमी है, वह एक अच्छा ख्रिस्तीय नहीं है। हम कठिनाइयों और दूसरों का सामना करने हेतु जो हमें निराश करती या कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं, धैर्यवान बने रहें। कतेरी टेकाविथा का जीवन हमारे लिए यह दिखलाता है कि यदि हम अपने हृदय को यीशु के लिए खोलते हैं तो हर चुनौती से विजयी पाई जा सकती है, क्योंकि वे हमारे लिए जरूरी कृपा प्रदान करते हैं। धैर्य और अपने हृदय को यीशु के लिए खोलना अच्छी तरह जीने का एक नुस्खा है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद कतेरी को मोहाक में शरण लेने को बाध्य होना पड़ा, जहां मोंटारियल शहर के निकट यीशु समाजी प्रेरिताई करते थे। वहां उसने हर सुबह मिस्सा बलिदान में भाग लिया, पवित्र परमप्रसाद की आराधना में अपने समय व्यतीत किए, रोजरी विनती की और एक परहेज का जीवन व्यतीत किया। उनके इन धार्मिक कार्यों ने हर एक को प्रभावित किया। प्रेरित कार्य में संलग्न लोगों ने कतेरी में एक पवित्रता को पहचाना जो लोगों को आकर्षित करती थी, क्योंकि वह ईश्वर के प्रति गहरे प्रेम से उत्प्रेरित थी। ईश्वर पवित्रता के द्वारा हमें आकर्षित करते हैं, इसके द्वारा वे हमें बुलाते और हमारे करीब रहने की चाह रखते हैं। उन्होंने दिव्य आकर्षण की इस कृपा को महसूस किया। इसके साथ ही वह बच्चों को प्रार्थना करना सिखलाती थी, अपने नित्य प्रतिदिन के निष्ठामय कार्य को पूरा करना जिसमें बीमारों और बुजुर्गों की सेवा करना था। उन्होंने अपनी नम्रता में ईश्वर और पड़ोसियों की प्रेममय सेवा का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। विश्वास सदैव सेवा में झलकता है। विश्वास में हम अपने को धोखा नहीं देते बल्कि दूसरों की सेवा करते हैं। संत पापा ने कहा कि यद्यपि उन्हें विवाह करने को प्रोत्साहित किया गया, कतेरी ने अपना जीवन ख्रिस्त के लिए समर्पित करने का चुनाव किया। वह समर्पित जीवन में प्रवेश नहीं कर पाई, लेकिन उसने 25 मार्च सन 1679 को जीवन भर कुमारी रहने का एक व्रत लिया। उसका यह चुनाव हमारे लिए प्रेरितिक उत्साह के एक दूसरे पहलू को व्यक्त करता है, जहां हम ईश्वर के प्रति अपने पूर्ण समर्पण को पाते हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप में हर कोई कतेरी की तरह व्रत धारण करने के लिए नहीं बना है, लेकिन हर ख्रिस्तीय अपने जीवन में ईश्वर से मिले बुलाहट और प्रेरितिक कार्य को अविभाज्य हृदय से पूरा करने हेतु बुलाया गया है।
Ogni cristiano è chiamato ogni giorno a impegnarsi con cuore indiviso nella vocazione e nella missione affidatagli da Dio, servendo lui e il prossimo, spirito di carità.
हम सभी ईश्वर और अपने पड़ोसियों की सेवा प्रेम में करने हेतु बुलाए गए हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा कि कतेरी का जीवन हमारे लिए प्रेरितिक उत्साह का साक्ष्य प्रस्तुत करता है, जहां हम उसे यीशु के संग एक गहरे संबंध में पाते हैं, जो प्रार्थना और संस्कार के द्वारा पोषित हुआ। अपने जीवन की खास बुलाहट के प्रति निष्ठावान रहते हुए उसने ख्रिस्तीय संदेश की सुंदरता को प्रसारित किया। संत पापा ने कहा,
Le ultime parole di Kateri sono bellissime. Prima di morire ha detto Gesù ti amo.
Kateri ke antim vachan ati sundar the, jise usne marne ke purv uchcharit kiya. Yesu, main tujhe prem karti hu. Hum bhi sant Kateri ki bhanti Ishwar se apni shakti prapt kare aur sadharan cheezon ko asadharan roop mein karna sikhe. Apne roz din ke vishwas प्रेम में बढ़ते हुए ख्रिस्त का साक्ष्य उत्साह में दे सके। संत पापा ने पुनः याद दिलाते हुए कहा, हम सभी पवित्रता हेतु बुलाए गए हैं अपने पूरे जन सामान्य ख्रिस्तीय जीवन में। यह हम में से प्रत्येक की बुलाहट है। हम इस मार्ग में आगे बढ़ें। ईश्वर हमें कभी असफल होने नहीं देंगे। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
मुझे तेरा बुलावा मिला। आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक ने मंगोलिया में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरित यात्रा को प्रस्तुत किया है, जहां वे पहले पोप होंगे जो इस एशियाई देश की यात्रा करेंगे। मंगलवार को जारी एक प्रेस सम्मेलन में वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने मंगोलिया में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरित यात्रा की रूपरेखा प्रस्तुत की। पोप 31 अगस्त से 4 सितंबर तक मंगोलिया की यात्रा करेंगे। यह इटली के बाहर उनकी 43वीं प्रेरित यात्रा होगी, जिसमें वे 61वें देश का दौरा करेंगे। यूक्रेन में जारी युद्ध के इस ऐतिहासिक क्षण में मंगोलिया का स्थान भू राजनीतिक रूप से प्रतीकात्मक है। इसका जिक्र संत पापा फ्रांसिस अपनी 3 दिवसीय प्रेरित यात्रा के दौरान अपने 5 भाषणों में से किसी एक में कर सकते हैं, जहां वे देश के विभिन्न संस्थागत एवं सामाजिक दलों से मुलाकात करेंगे। हालांकि उनकी प्रेरित यात्रा का केंद्र बिंदु छोटी काती कलीसिया से मिलना होगा, जिसमें विश्वासियों की संख्या सिर्फ 1,500 है। ब्रूनी ने कहा, पोप मुख्य रूप से उन्हें संबोधित करने के लिए मंगोलिया जा रहे हैं। वे इस सुंदर समुदाय को प्रोत्साहन और आशा के शब्द प्रदान करेंगे, जो मानव जीवन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। मंगोलिया में काती कलीसिया की स्थापना 4वीं शताब्दी में शुरू हुई, जब वहां प्रथम धर्मदक्ष की नियुक्ति हुई और जब मंगोल साम्राज्य में चीन का हिस्सा भी शामिल था। बाद में उस क्षेत्र में ईसाइयों की उपस्थिति कम होने लगी, जो कम्युनिस्ट तानाशाही शासन के दौरान पूरी तरह गायब हो गई। 1992 में कलीसिया की पुनर्स्थापना हुई और यह पिछले 30 वर्षों में उपस्थिति बनाए रखने के लिए आमंत्रित मिशनरियों के महान कार्यों से पुनः सशक्त हुई है। सबसे महत्वपूर्ण धर्म समाज मिशनरीज ऑफ द कंसोल्टा है, जिसने मंगोलिया के पहले और एकमात्र कार्डिनल जॉर्ज मारेंगो को दिया है, जो इस समय उलनबाटोर के प्रेरितिक अध्यक्ष हैं, जिन्हें पिछले साल की कंसिस्ट्री में लाल टोपी मिली है। 3 सितंबर को संत पापा फ्रांसिस का ख्रिस्त्याग उनकी यात्रा का केंद्र बिंदु होगा, विशेषकर कलीसिया के इतिहास की पृष्ठभूमि पर और छोटी कलीसिया के समाज के क्षेत्र में सक्रिय सहभागिता के मद्देनजर। मंगोलिया में रहने वाले 1,500 विश्वासियों में 90% राजधानी में रहते हैं, जिनके साथ रूस, चीन, थाईलैंड, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान और वियतनाम सहित विभिन्न पड़ोसी देशों के लगभग 1,000 विश्वासी शामिल होंगे। रविवार को संत पापा ख्रिस्ते एकतावर्तक वार्ता एवं अंतरधार्मिक वार्ता के कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे, जिसमें शमनवाद, शिंटोवाद, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म, हिंदू धर्म और अन्य संप्रदायों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। मत्तेओ ब्रूनी ने कहा, ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के बुलाहट के लिए चिन्ह प्रकट करेंगे, जो दशकों से मंगोलिया की विशेषता रही है। सरकारी अधिकारी और विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी सभा में उपस्थित होंगे। ब्रूनी ने तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक को लेकर चीन के साथ संभावित तनाव के बारे में भी सवाल के जवाब दिए, जिसमें बुद्ध के 10वें अवतार माने जाने वाले एक बच्चे के साथ मुलाकात, साथ ही पावन ख्रिस्त्याग के बाद रूसी और चीनी ख्रिस्तियों के साथ एक निजी मुलाकात की संभावना भी शामिल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत मुलाकात की कोई योजना फिलहाल नहीं बनी है। उन्होंने बताया कि ख्रिस्ते एकता एवं अंतर्धार्मिक कार्यक्रम में बौद्ध धर्म समेत सभी धर्मों के दल शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मंगोलिया में बौद्धों की बहुलता है, जो शांति के लिए बहुत अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। पड़ोसी देश चीन से संभावित संदर्भ के लिए प्रेस कार्यालय के निदेशक ने रविवार 27 अगस्त को अंतिम देवदूत प्रार्थना में पोप के शब्दों को याद किया। उन्होंने कहा, पोप रविवार को बहुत स्पष्ट थे, वे मंगोलिया जा रहे हैं। वे इस मुलाकात की बड़ी इच्छा रखते हैं और खुशी एवं बड़े सम्मान के साथ आगे देख रहे हैं। उन्हें लोगों से मिलने की बड़ी अभिलाषा है। मंगोलिया की प्रेरितिक यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पहले संत पापा फ्रांसिस ने विश्वासियों से यात्रा की सफलता हेतु प्रार्थना का आग्रह किया है। बुधवार आम दर्शन समारोह के दौरान स्पानी भाषी तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए संत पापा ने प्रेरितिक यात्रा हेतु बृहस्पतिवार को अपने प्रस्थान की याद की। वे इस एशियाई देश में 4 दिन व्यतीत करेंगे। संत पापा ने कहा, कल दोपहर को मैं एशिया महादेश के लिए अपने भाइयों एवं बहनों से मुलाकात करने के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी प्रार्थनाओं द्वारा मेरी इस यात्रा में भाग लें। 31 अगस्त से 4 सितंबर तक मंगोलिया की यात्रा पोप फ्रांसिस की विदेश में 43वीं प्रेरित यात्रा होगी। मंगोलिया में फिलीपींस के मिशनरी फादर जाय मार्क गुटेरेस ने संत पापा फ्रांसिस की मंगोलिया में प्रेरित यात्रा पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि उनकी उपस्थिति युवा ख्रिस्त समुदाय के लिए एक पोषण का काम करेगी। उन्होंने वैटिकन न्यूज से कहा, चाहे हम कितने युवा क्यों ना हों, चाहे हम कितने छोटे क्यों ना हों, चाहे हम कितने अलग थलग क्यों ना हों, उनके दिल में हमारे लिए एक विशेष स्थान है। मंगोलियाई जैसे युवा और छोटे कार्तिक समुदाय के लिए पोप फ्रांसिस की यात्रा इसके इतिहास एवं विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण होगी, जहां की कार्तिक कलीसिया में 31 वर्षों में 1500 लोगों ने बपतिस्मा लिया है। फादर जाय का अभिषेक 3 साल पहले हुआ है, लेकिन वे 6 वर्षों से मंगोलिया में रह रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने सृष्टि के मौसम की याद दिलाई है, जो 1 सितंबर को सृष्टि की देखभाल हेतु विश्व प्रार्थना दिवस से शुरू और 4 अक्टूबर को संत फ्रांसिस असीसी के पर्व के साथ समाप्त होगा, जब लौदातो सी के दूसरे भाग को प्रकाशित किया जाएगा। बुधवार को आम दर्शन समारोह के अंत में पोप फ्रांसिस ने सृष्टि की देखभाल के लिए विश्व प्रार्थना दिवस की याद दिलाई, जिसे हर साल 1 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की विषय वस्तु है, न्याय और शांति प्रवाहित हो। इसी के साथ सृष्टि के मौसम की शुरुआत होती है, जिसकी अवधि 4 अक्टूबर तक है। जैसा कि उन्होंने पिछले 21 अगस्त को यूरोपीय परिषद के सदस्य देशों के वकीलों के सामने घोषणा की थी, विश्व पत्र के दूसरे भाग का प्रकाशन 4 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। संत पापा ने वकीलों से कहा था, उस तारीख को मैंने एक प्रबोधन के रूप में लौदातो सी के दूसरे भाग को प्रकाशित करने की योजना बनाई है। आइए हम सृष्टिकर्ता के पावन उपहार के रूप में सृष्टि की देखभाल की हमारे ख्रिस्ती भाइयों और बहनों की प्रतिबद्धता में शामिल हों। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।